नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का 730 करोड़ रुपए का आईपीओ बुधवार को अभिदान के लिए खुल गया। कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने कर्ज के बोझ को कम करने और कारोबार विस्तार पर करेगी। आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 366 से 385 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ का कुल आकार 730 करोड़ रुपए का है। इसके तहत कंपनी 603 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा इसमें 127 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी शामिल है। दिल्ली एनसीआर की कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल पहले ही एंकर निवेशकों से 318.5 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि कंपनी पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक शुद्ध रूप से 1100 करोड़ रुपए का कर्ज था। आईपीओ से प्राप्त राशि में वो 432 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए करेगी। यूरोपीय संघ द्वारा कुछ क्षेत्रों पर कार्बन कर लगाने के फैसले को देखते हुए भारत को भी सकारात्मक तरीके से उसके कुछ उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है। यूरोपीय संघ ने जनवरी 2026 से कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसका अनुपालन इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसे कार्बन गहन उत्पादों का निर्यात करने वाले व्यवसायों अगले महीने से यूरोपीय संघ के अधिकारियों से विस्तृत उत्पादन आंकड़ा साझा करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाबी उपाय तेजी से कार्यान्वयन सहित कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत यूरोपीय संघ या किसी अन्य भागीदार देश की कार्रवाई को सटीक तरीके से प्रतिबिंबित करने के लिए उत्पाद सूची और शुल्क स्तर को समायोजित कर सकता है। GTRI के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, इसके उपाय के रूप में एक सोच विचार वाली जवाबी कार्रवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमने पहले भी ऐसा किया है। चीन और शेष एशियाई देशों की मांग घटने से जापान का निर्यात पिछले महीने एक साल पहले की तुलना में 0.8% घट गया है। जापान के वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इस दौरान जापान के आयात में 18% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इसी तरह अगस्त में जापान का व्यापार घाटा 930.5 अरब येन या 6.3 अरब डॉलर रहा है। लगातार दूसरे महीने जापान को व्यापार घाटा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार एशियाई बाजारों को जापान का निर्यात 8.8% घट गया। इसकी प्रमुख वजह चीन को निर्यात घटना है। चीन को मूल्य में निर्यात 11% नीचे आ गया है। हाल ही के महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था के कोविड महामारी के बाद उबरने की उम्मीदों को झटका लगा है। ING के क्षेत्रीय प्रमुख एशिया प्रशांत रॉबर्ट कार्नेल ने कहा, हमारा मानना है कि चीन में कमजोर पुनरुद्धार का निर्यात पर नकारात्मक असर अभी जारी रहेगा। दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर इसमें 3% की बढ़ोतरी होती है तो ये 45% पर पहुँच जाएगा। सरकार जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी DA में 4% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और अगर सरकार 4% बढ़ाती है तो ये बढ़कर 46% हो जाएगा। बता दें कि अगर एक कर्मचारी को 36,500 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो उसका DA 15,330 रुपये है। वहीं अगर DA में 3% की बढ़ोतरी होती है तो उसकी सैलरी 1,095 बढ़कर आएगी। भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा किराया नियमों में संशोधन करके पिछले 7 साल में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कमाई की है। एक RTI के जवाब में ये जानकारी मिली। RTI अधिनियम के तहत सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक जवाब से पता चला कि संशोधित मानदंडों के कारण रेलवे को अकेले 2022-23 में 560 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इस तरह ये सबसे अधिक लाभदायक साल बन गया। रेल मंत्रालय के तहत आने वाला CRIS टिकट और यात्रियों, माल ढुलाई सेवाओं, रेल यातायात नियंत्रण और परिचालन जैसे मुख्य क्षेत्रों में IT समाधान मुहैया कराता है। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च 2016 को घोषणा की थी कि रेलवे 5 साल और 12 साल के बीच उम्र वाले बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा अगर उन्हें आरक्षित कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए। संशोधित मानदंड 21 अप्रैल 2016 से लागू हुई। इससे पहले रेलवे 5 से 12 साल के बच्चों के लिए आधा किराया लेकर उन्हें बर्थ देता था। एक अन्य विकल्प के तहत अगर बच्चा अलग बर्थ ना लेकर साथ यात्रा कर रहे वयस्क के बर्थ पर ही सफ़र करता है तो भी उसके लिए आधा किराया देना होगा। अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर निर्णय से पहले वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट आई। विदेशी कोषों की निकासी तथा HDFC बैंक के शेयर में बिकवाली से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 611.48 अंक टूटकर 66,985.36 अंक पर आ गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।